हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 5 कर्म योग कृष्ण भावना भावित कर्म श्लोक क्रमांक 15। नादत्ते कस्यचित् पापं न चैवं सुकृतं विभु अज्ञानिनावृतं ज्ञानं तेन मोहयन्ति जन्तवः। परमेश्वर न तो किसी के पापों को ग्रहण करता है न पुण्यों को, किंतु सारे देहदारी जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं जो उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहता है। यह अज्ञान क्या है? यह अज्ञान है हमारा स्वभाव, जो हमने इस बहुत अनादि काल से इस भौतिक प्रकृति में रहते हुए रजोगुण तमोगुण सतोगुण इत्यादि का संग करने के कारण मिश्रित तरह से बना लिया है। अपनी स्थिति के लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं, इसके लिए भगवान को दोष देना यह भी अज्ञान का ही लक्षण है। तात्पर्य, विभु का अर्थ है परमेश्वर, जो असीम ज्ञान धन बल यश सौंदर्य तथा त्याग से युक्त है, यही भगवान का अर्थ भी होता है। वह सदैव आत्मतृप्त और पाप पुण्य से अवचलित रहता है। वह किसी भी जीव के लिए विशिष्ट परिस्थिति नहीं उत्पन्न करता, अपितु जीव अज्ञान से मोहित होकर जीवन की ऐसी परिस्थिति की कामना करता है जिसके कारण कर्म तथा फल की श्रृंखला आरंभ होती है। हम सभी बद्धात्माएं इस जगत में हैं जगत को भोगने की इच्छा से, और इस इच्छा को अलग अलग तरह से हम लोग अलग अलग जन्मों में भोगने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन एक अद्भुत बात है, भगवान हमारे हृदय में है और वो पूरी तरह से इस पाप पुण्य से विचलित नहीं होते। जैसे हम कुछ पुण्य करते हैं या पुण्य का फल प्राप्त करते हैं तो हर्ष होता है, सुख मिलने लगता है और हम उससे अभिभूत हो जाते हैं, और अगर कोई हमारे सामने पाप कर रहा हो तो हम उससे भी प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन भगवान इन चीजों से प्रभावित नहीं होते। उदाहरण के लिए आप किसी को, मान लीजिए किसी का मर्डर करते हुए देखें तो हम प्रभावित हो जाएंगे, हम घबरा जाएंगे, लेकिन भगवान जो मर्डर करने वाला है उसके हृदय में भी है, जिसका मर्डर हो रहा है उसके हृदय में भी है, भगवान पूरी तरह से इससे बिल्कुल अविचलित रहते हैं। ये हमारे हृदय में भी जितनी भी बुरी इच्छाएं अच्छी इच्छाएं आती हैं सबके प्रति भगवान सब उसके साक्षी हैं, लेकिन भगवान उससे प्रभावित नहीं होते। एक और उदाहरण से समझिए, मान लीजिए दिन भर आकर कोई व्यक्ति आपको या लोग बाग आकर के आपको अपनी प्रॉब्लम बताते रहे, समस्याएं बताते रहे, तो शाम तक आप परेशान हो जाएंगे, लेकिन हर क्षण जीवात्मा अपनी समस्याओं को भगवान के सामने रख रहा है। आप कहेंगे नहीं, हम तो बहुत से लोग तो भगवान पर विश्वास नहीं करते, लेकिन एक्चुअली हर जीवात्मा इच्छा कर रहा है, उसकी पूर्ति भगवान कर रहे हैं। तो अज्ञान के कारण हम नहीं समझ नहीं पा रहे हैं कि हमें इच्छा करनी क्या है। प्रायः हम सोच रहे हैं कि हम भोग करेंगे और इच्छाओं को, अपनी इच्छाओं को भोग की तरफ मोड़ने से मैं सुखी हो जाऊंगा, और इस बात को श्रीमद् भागवत में इसका खंडन किया गया है। कामस्य न इंद्रिय प्रीति यावत जीवित लाभतः, जब तक हम जीवन जिए कामोपभोग के लिए अपनी इच्छाओं को नहीं मोड़ना चाहिए, अपितु जीवस तत्व जिज्ञासा न यश्चेह तत्व कर्म भी, कि जीव को जीवात्मा को तत्व की जिज्ञासा के लिए ही अपने जीवन यापन करना चाहिए। तो अगर वो भोग की कामना करता है तो फिर प्रकृति के द्वारा भगवान के नियंत्रण में ऐसी स्थिति प्रस्तुत कर दी जाती है कि उसके भोग की सामग्री प्राप्त हो। जीव परा प्रकृति के कारण ज्ञान से पूर्ण है, यानी स्वरूप से हम ज्ञानमय हैं, तो भी वह अपनी सीमित शक्ति के कारण अज्ञान के वशीभूत हो जाता है। इससे पहले भी हमने चर्चा किया था, तटस्थ शक्ति है जीव, तट पे स्थित। जिस प्रकार से समुद्र के तट पे जीव, कोई व्यक्ति समुद्र में भी जा सकता है और धरती पे भी आ सकता है, उसी तरह से जीवात्मा भौतिक प्रकृति को भी से भी अपने पहचान कर सकती है और भगवान के दास के रूप में भी अपनी पहचान कर सकती है। और इसी कारण से जब हम अपनी पहचान शरीर से करते हैं तो हम अज्ञान के वशीभूत हो जाते हैं। और एक बात और इम्पोर्टेंट है, अज्ञान को अगर हम स्वभाव के रूप में लें तो अगर हम अपने स्वभाव के अनुसार जो हमको मिला है उसके अनुसार भौतिक क्रियाकलाप में ही लगे रहेंगे तो ये अज्ञान बढ़ता चला जाएगा कि मैं शरीर हूं। लेकिन भक्तों का संग करके, भगवान के बारे में सुन करके व्यक्ति समझे कि वो कृष्ण का दास है और उसके अनुसार क्रिया करेगा तो अज्ञान से वशीभूत नहीं होगा, अपितु वो अज्ञान से मुक्त होता चला जाएगा क्रमशः। भगवान सर्वशक्तिमान है किंतु जीव नहीं। भगवान विभु अर्थात सर्वज्ञ है किंतु जीव अणु है। जीवात्मा में इच्छा करने की शक्ति है, किंतु ऐसी इच्छा की पूर्ति सर्वशक्तिमान भगवान द्वारा की जाती है। उदाहरण के लिए मैं इस समय भगवान के बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ, तो मैं इच्छा कर रहा हूँ और मेरी वाणी से जो आवाज आ रही है, ये मेरी इच्छा या मेरे जो विचार हैं वो किस प्रकार से वाणी के रूप में परिणत हो रहे हैं इसकी मेरे को जानकारी नहीं है। ये हम लोग हाथ हिलाते हैं, हाथ घुमाते हैं, हम केवल इच्छा करते मात्र हैं, बाकी भगवान की शक्ति से इतने तेजी से क्रियान्वित होता है कि हमको ये लगता है कि हम ये स्वयं कर रहे हैं, लेकिन वस्तुतः ये भगवान की शक्ति से होता है। तो हम मात्र इच्छा करते हैं और भगवान उसको पूर्ण करते हैं। अतः जब जीव अपनी इच्छाओं से मोहग्रस्त हो जाता है तो भगवान उसे अपनी इच्छा पूर्ति करने देते हैं, किंतु किसी परिस्थिति विशेष में इच्छित कर्मों तथा फलों के लिए उत्तरदायी नहीं होते। यानी कि जब मैं कोई कार्य करने की इच्छा करता हूं और मेरे कर्मों के अनुसार उस कार्य को मैं करने के लिए योग्य हूं या मुझे वो कर्म करने दिया जाना चाहिए, तो फिर भगवान उसको हमें करने के लिए देते हैं, अदरवाइज अन्यथा हम उस कार्य को नहीं कर सकते। जैसे बहुत सारी जगत में हम लोग इच्छा करते हैं कि ये मिल जाता तो ऐसा होता, बड़ा अच्छा हो जाता, और उसके लिए प्रयास भी करते हैं लेकिन वो कार्य सफल नहीं होता, तो भगवान उसको अनुमोदन नहीं देते हैं, क्योंकि हमने इस प्रकार से कर्म पहले से किया नहीं रखा है। अतएव मोहग्रस्त होने से देहधारी जीव अपने को परिस्थिति जन्य शरीर मान लेता है और जीवन के क्षणिक सुख तथा दुख को भोगता है। ये बहुत अद्भुत बात है, जब हम समझेंगे कि हम शाश्वत हैं तो भी हमारा जीवन चलता रहेगा, ऐसी बात नहीं है कि जीवन के जो सुख और दुख हैं उनके लिए हम कुछ ना करें, लेकिन उससे व्यक्ति बहुत अधिक प्रभावित नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैसे मान लीजिए कोई एक क्षण के लिए आपको 100 रुपये देता है या 1 करोड़ रुपये देता है और वो छीन लेता है, तो 1 करोड़ रुपये मिलने के और जले जाने के लिए सुख और दुख में आप क्या रिएक्ट करेंगे? ऐसे ही हमारा जो जीवन है ये अनंत शाश्वत समय में एक क्षण के समान भी नहीं है। तो इस जीवन की उपलब्धियों के प्रति आसक्त हो जाने के बजाय बुद्धिमान मनुष्य अपनी कह सकते हैं आत्यंतिक लाभ जो है भगवान के धाम की प्राप्ति करना, भगवान की भक्ति की प्राप्ति करना, उसके लिए वो प्रयास करेगा। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम भौतिक रूप से सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं, सफल नहीं हो सकते, लेकिन उसमें अपनी चेतना को पूर्ण रूप से आविष्ट करना ये बुद्धिमानी नहीं है। वस्तुतः शास्त्र का निर्णय तो यही है कि व्यक्ति किसी तरह से शरीर का निर्वाह कर ले और अपनी भक्ति करने के लिए जो भी आवश्यक हो उतना वो भौतिक धन सामग्री इकट्ठा करे और बाकी पूरा समय अधिक से अधिक समय भगवान की भक्ति के लिए लगाए जिसके लिए मानव जीवन प्राप्त हुआ है। विषय खलु सर्वथा स्यात्, भोग की सामग्री हर योनि में प्राप्त है, लेकिन भगवान की भक्ति करने की शक्ति केवल हमको मानव शरीर में प्राप्त है। तो इस कारण से इसलिए उसी समय भोग करना, इसमें ही हमको योग का अभ्यास करना चाहिए, भक्ति का अभ्यास करना चाहिए। भगवान परमात्मा रूप में जीव का चिर संगी रहते हैं, फलतः वे प्रत्येक जीव की इच्छाओं को उसी तरह समझते हैं जिस तरह फूल के निकट रहने वाला फूल की सुगंध को। इच्छा जीव को बद्ध करने के लिए सूक्ष्म बंधन है। थोड़ा समझना चाहिए, इससे भगवान का धैर्य भी दिखाई पड़ता है। इस जगत में माता पिता भी अपने बच्चों से प्रति करुणा करते हैं, प्रेम करते हैं, लेकिन बच्चा अगर बीमार पड़ जाए या विकलांग हो जाए या मानसिक रूप से वो बहुत विकसित नहीं हो, तो कुछ समय में के बाद वो भी हार जाते हैं और कहते हैं कि अब क्या करा जा सकता है, या फिर बच्चा उनका उनके प्रेम का प्रतिदान नहीं करता तो उनका वो भी अपना मुख मोड़ लेते हैं। लेकिन भगवान ऐसे इतने प्रेमी पिता हैं कि अनादि काल से हम उनसे अपना मुख जो है वो मोड़े हुए हैं, उनकी सेवा नहीं कर रहे, फिर भी हमारी सारी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति कर रहे हैं। ये विचार, ये बात खाली सुनने की नहीं है, इस पर हमें मनन करना चाहिए कि कितना भगवान के अंदर धैर्य है। उनसे विद्रोह करके हम जगत में आए हुए हैं, फिर भी भगवान कभी भी हमारे हृदय से नहीं जाते। इस बारे में एक महान साधु बता रहे थे कि ऐसा हम कुछ नहीं कर सकते, कोई भी जीवात्मा कुछ नहीं कर सकता कि उसके हृदय से भगवान चले जाए। तो भगवान की असीमित कृपा है। क्यों भगवान हमारे हृदय में बैठे हैं? एक तो ये सत्य है कि परमात्मा के रूप में हमारे कर्मों के अनुसार हमें फल दे रहे हैं, भोग की सामग्री दे रहे हैं, व्यवस्था कर रहे हैं भोग की, लेकिन साथ साथ वो इसलिए भी बैठे हैं, वो प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब हम उनकी तरफ मुड़े। और एक बार भी हमने इच्छा करी कि मुझे भगवान के धाम जाना है, भगवान की भक्ति करनी है, तो फिर भगवान सारे रास्ते खोलते चले जाएंगे। और इस कारण से जब हम भक्ति करें तो तो कभी कभी थोड़ी कभी शुरुआत में जब भी कोई भी असफलता है, कोई पतन हो जाता है, तो भक्ति छोड़नी नहीं चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान मुझको रिजेक्ट कर देंगे, अब तो मेरे लिए कोई होप नहीं है, मेरा उद्धार तो भगवान भी नहीं कर सकते। ये सब मूर्खता है, कभी नहीं सोचना चाहिए। भगवान हमारे दोषों को कभी देखते ही नहीं। अब आप ये सोचिए कि जो व्यक्ति ध्यानपूर्वक जप नहीं कर रहा है, हेलना में जाप कर रहा है, उसको भी भगवान मुक्त कर देते हैं। तो अगर प्रेम से श्रद्धा से नाम जप करे, भक्ति करे, सारे कार्य करे, तो कितना भगवान प्रसन्न होंगे। तो भगवान की तो अपेक्षा केवल यही है कि हम उनकी तरफ उन्मुख हों, उनकी सेवा करें और उसके द्वारा उनके धाम की प्राप्ति करने का अधिकार प्राप्त करें। इसीलिए भगवान हमारे हृदय में बैठे हुए कि कभी जीवात्मा किसी तरह से भगवान की सेवा की इच्छा करे। और इसी कारण से सर्वश्रेष्ठ सेवा यही है कि लोगों के हृदय में भगवान की सेवा के प्रति श्रद्धा उत्पन्न की जाए। और वो बहुत मुश्किल नहीं है, हम स्वयं भक्ति करें और जो भगवान की वाणी है उसको ठीक प्रकार से सुनकर यथारूप लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाए, तो निश्चित रूप से भगवान के प्रति वो आकृष्ट हो जाएंगे। और भगवान का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण। भगवान मनुष्य की योग्यता के अनुसार उसकी इच्छा को पूरा करते हैं। आपन सोची होत नहीं, प्रभु सोची तत्काल। अतः व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूरा करने में सर्वशक्तिमान नहीं होता, किंतु भगवान इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। वे निष्पक्ष होने के कारण स्वतंत्र अणुजीवों की इच्छाओं में व्यवधान नहीं डालते, किंतु जब कोई कृष्ण की इच्छा करता है तो भगवान उसकी विशेष चिंता करते हैं और उसे इस प्रकार प्रोत्साहित करते हैं कि भगवान को प्राप्त करने की उसकी इच्छा पूरी हो और वह सदैव सुखी रहे। बहुत अच्छी पैराग्राफ है, थोड़ा सुनिए। एक तो ये कि हम जो इच्छा करते हैं वो इच्छा हमारी स्वतंत्र नहीं है, हम लोग सत्य संकल्प नहीं है। कितने संकल्प हमारे हृदय में उठते हैं वो पूर्ण नहीं होते, लेकिन भगवान के संकल्प, भगवान सत्य संकल्प है, सत्य संकल्प है, और जो भी संकल्प करते हैं, इच्छा करते हैं, वो तत्काल पूर्ण हो जाती है। तो भगवान हमारी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, परमात्मा के रूप में बता रहा हूं, लेकिन वो देखते हैं कि क्या इस जीवात्मा की योग्यता है, क्या इसने ऐसे कार्य किए हैं जिसके द्वारा इसको ये कार्य या जो इसकी इच्छा इसकी पूर्ण होनी चाहिए। तो ये भगवान देखते हैं, परमात्मा के रूप में इस प्रकार से कार्य करते हैं। और अगर वो व्यक्ति भोग करना चाहता है या कोई पाप भी करना चाहता है तो भगवान उसमें उसको रोकते नहीं है, क्योंकि निष्पक्ष है भगवान परमात्मा के रूप में। लेकिन यहां पे एक और बात बता रही है कि किसी भी तरह से जब कोई व्यक्ति भगवान की सेवा की इच्छा करता है तो भगवान उसके लिए विशिष्ट परिस्थिति दे देते हैं जो उसके कर्मों के अनुसार नहीं होता है। बाकी चीजें हमारे कर्मों के अनुसार, योग्यता के अनुसार होते हैं, लेकिन भगवान की सेवा के लिए केवल इच्छा करनी है। अब बताइए कितनी सुंदर बात है, चाहे मेरे पास धन हो या नहीं हो, बुद्धि हो कि नहीं हो, लेकिन मैं सेवा की इच्छा तो कर सकता हूं ना भगवान की, क्योंकि इच्छा करना तो ये आत्मा का गुण है। इसका तो हमारे शरीर से और मन से, हमारे धन वैभव से, बुद्धि से कोई संबंध नहीं है। एक कोई मान लीजिए ये भी इच्छा करे कि भगवान मैं आपको जल अर्पित करना चाहता हूं, तो भगवान उससे प्रसन्न हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि गरीब से गरीब और अमीर से अमीर व्यक्ति भी भगवान श्री कृष्ण की सेवा कर सकता है और भगवान उससे पूरी तरह संतुष्ट हो जाते हैं। अतएव वैदिक मंत्र पुकार कर कहते हैं, एष ही एव साधु कर्म कार्यति तम यमेभ्यो लोकेभ्य उन्नी निशते, एषा उस एव असाधु कर्म कार्यति यमधो निनिशते। भगवान जीव को शुभ कर्मों में इसलिए प्रवृत्त करते हैं जिससे वह ऊपर उठे, भगवान उसे अशुभ कर्मों में इसलिए प्रवृत्त करते हैं जिससे वह नरक जाए। अब आप एक चीज में जरूर संदेह करेंगे कि भाई फिर किन लोगों को अशुभ कर्मों में प्रवृत्त करते हैं और अशुभ कर्मों में किनको करते हैं। अब हम उत्तर बहुत सिंपल है, आप समझ गए होंगे कि जो इच्छा करता है इस प्रकार से। अब आप कहेंगे कि अशुभ कर्म करने की इच्छा कहां से आएगी और शुभ कर्म करने की इच्छा कहां से आएगी, तो आप लोग इस बात को शायद जानते होंगे, सत्संग या असत्संग। जिस जैसे लोगों का हम संग करते हैं उसी प्रकार की इच्छाएं हमारे हृदय में आ जाएंगी। तो अगर भगवत कृपा से आपको भक्तों का संग मिल रहा है, ये भगवत गीता सुनने को मिल रहा है, तो इसको बड़े ही आग्रह से स्वीकार करना चाहिए। हरे कृष्ण मंत्र तो आप जानते ही होंगे, उसको बड़े आग्रह से जप करना चाहिए और भगवान की सेवा को सीखने का प्रयास करना चाहिए भगवान के शुद्ध भक्तों के द्वारा। और जब ऐसा करेंगे तो फिर भगवान आपको कितना प्रोत्साहन देंगे, कितना आपको मौका देंगे, ये तो अपने जीवन के अनुभव से ही आप सीख पाओगे कि कितनी भी गलती करूं भगवान बार बार मेरे जीव पे आ रहे हैं, हरे कृष्ण मंत्र के रूप में वो सामने प्रकट हो रहे हैं, इसका मतलब भगवान ने मुझको रिजेक्ट नहीं किया है। मुझको अब भगवान को रिजेक्ट नहीं करना, रिजेक्शन भगवान की तरफ से नहीं, वो हमारी तरफ से है। तो व्यक्ति को बुद्धिमान बुद्धि लगा करके कृष्ण की उत्साह से सेवा करने के लिए कमर कस लेनी चाहिए। यहाँ ये कौशितकी उपनिषद से है, अज्ञो जंतुरनीशोयम आत्मनः सुख दुःखयोः ईश्वर प्रेरितो गच्छेत् स्वर्गम वाश्वभ्रमेव च। जीव अपने सुख दुख में पूर्णतः आश्रित है, परमेश्वर की इच्छा से वह स्वर्ग या नरक जाता है जिस तरह वायु के द्वारा प्रेरित बादल। अब एक और बात समझ में आना चाहिए, जैसे कोई व्यक्ति जेल जाता है, कोई अपराधी है, तो जो जज है वो नहीं चाहता है कि किसी को जेल भेजा जाए, लेकिन उसने अपनी इच्छा से ऐसे कृत्य किए हैं कि जज के द्वारा ये जजमेंट दिया जाता है कि इस व्यक्ति को जेल भेज दिया जाए और पुलिस के द्वारा उसको क्रियान्वित किया जाता है। तो उसी प्रकार से प्रकृति है, जीवात्मा है और भगवान है। जब जीव इच्छा करता है तो उसके अनुरूप भगवान प्रकृति को आदेश देते हैं कि इसकी इच्छा को इस प्रकार से पूर्ण किया जाए, और उसको करने में जीवात्मा की स्वतंत्र शक्ति नहीं है। फिर उदाहरण को दे रहा हूं, मैं बोल रहा हूं ऐसा मुझे लगता है, लेकिन मैं विचार कर रहा हूं, मैं भगवान के बारे में कुछ बोलूंगा, तो समझने की शक्ति और एक बोलने की शक्ति और मेरा किस प्रकार से मेरे कह सकते हैं गले से या जैसे भी करके आवाज आ रही है इसके बारे में पूरी तरह से मैं अनभिज्ञ हूं, लेकिन भगवान इसको क्रियान्वित कर रहे हैं ताकि मैं भगवान के बारे में कुछ बोल सकूं। तो मैं सिंपल उदाहरण दे रहा हूं, इसी प्रकार से दुनिया में हम कुछ भी कार्य कर रहे हैं वो करने की शक्ति भगवान के द्वारा ही आती है। इसको भगवान आके बताते हैं पौरुषम दृशु, लोगों के अंदर कुछ करने की शक्ति जो है वो भगवान से ही आती है। तो इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि अरे भगवान से ही आ रही शक्ति तो क्यों ना उसको पूरी तरह से भगवान की सेवा में ही समर्पित किया जाए और अनंत जीवन का लाभ उठाया जाए। भगवान खुद बोलते ही है, जो तुम कर रहे हो, जो खा रहे हो, जो दान कर रहे हो, जो तपस्या कर रहे हो, अगर तुम उसको समर्पित कर देते हो तो शुभ और शुभ दोनों प्रकार के फलों से मुक्त होकर के तुम उनके पास पहुंच जाओगे। तो इसलिए ये कार्य बहुत आसान है और बस इसके लिए थोड़ी सी ट्रेनिंग की आवश्यकता है कि कैसे हम सारी क्रियाओं को कृष्ण को समर्पित करना सीखें। अतः देहधारी जीव कृष्ण भावनामृत की उपेक्षा करने की अपनी अनादि प्रवृत्ति के कारण अपने लिए मोह उत्पन्न करता है। यानी कि कब हम कृष्ण से विमुख हो गए ये अनादि है, इसकी कोई शुरुआत नहीं है। अब इसको भले ही हम समझ ना सकें लेकिन हमें सिद्धांत के अनुसार भगवद्गीता से सुन करके स्वीकार कर लेना चाहिए। लेकिन अनादि है इसका अर्थ ये नहीं है कि अनंत है, अनादि का अर्थ है इसकी शुरुआत नहीं है लेकिन अनंत नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये जो प्रवृत्ति है भगवान की सेवा ना करने की ये हमेशा बनी रहेगी। तरीका क्या है? साधना भक्ति। साधना भक्ति में हम अभ्यास करते हैं और बार बार अभ्यास करके करके भगवान के संपर्क में आते हैं। एक्चुअली जितनी बार हम भगवद्गीता सुन रहे हैं, भगवान का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, भगवान का नाम जप कर रहे हैं, तो साक्षात भगवान के संपर्क में आ रहे हैं। और इस प्रकार से जब बार बार संपर्क में आते हैं तो ये जो हमारी बीमारी है कृष्ण की उपेक्षा करने की, कृष्ण की सेवा ना करने की, ये धीरे धीरे चली जाती है। अपितु कृष्ण का श्रवण करने की, कृष्ण का नाम जप करने की, भगवान कृष्ण की सेवा करने की जो इच्छा है वो और बढ़ती चली जाती है और इसमें कभी कोई ह्रास नहीं होता। इस बात को भी गीता में हमने समझा है, नेह भी क्रम नाश्वती प्रत्यवायु न विद्यते स्वर्गमस्य पे धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। तो शुरुआत में देख सकते हैं आप लोग एक माला करते हैं तो दो माला करने लग जाते हैं, फिर चार माला करते हैं, फिर उसका 8, 10, 12 और 16 भी करने लगते हैं। और शुरुआत में सोचते हैं अरे मैं 16 कैसे करूंगा, ये लोग बाग 16 कैसे करते हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि जो व्यक्ति जितनी अधिक भक्ति करता है उतना ही अधिक भक्ति करने की इच्छा उसकी बढ़ती चली जाती है, क्योंकि वो वस्तुतः हमारा स्वरूप भी है। फल स्वरूप स्वभावतः सच्चिदानंद स्वरूप होते हुए भी वह अपने अस्तित्व की लघुता के कारण भगवान के प्रति सेवा करने की अपनी स्वाभाविक स्थिति को भूल जाता है और इस तरह वह अविद्या द्वारा बंदी बना लिया जाता है। अविद्या का मतलब ही है कि अज्ञान में पड़ जाना, अपने स्वरूप को जो कृष्ण के सेवक के रूप में उसको भूल जाना और भौतिक प्रकृति से या अपने भौतिक शरीर से अपनी पहचान करके इस जगत का भोक्ता बनने की सोचने लग जाना। भोक्ता बन नहीं सकते, भोक्ता बनने की धारणा से ग्रसित हो जाना और भगवान की सेवा की उपेक्षा करना। अज्ञानवश जीव यह कहता है कि उसके बंधन के लिए भगवान उत्तरदायी हैं। इसकी पुष्टि वेदांत सूत्र भी करते हैं, वैषम्य न गृणन्य न सापेक्षत्वात् तथा ही दर्शयति। भगवान न तो किसी के प्रति घृणा करते हैं न किसी को चाहते हैं, यद्यपि ऊपर से ऐसा प्रतीत होता है। तो जैसे वही वाला उदाहरण आप विचार कीजिए, कोई जज है वो न्यूट्रल रहता है, लेकिन कोई व्यक्ति को पुरस्कार मिलता है, किसी को दंड मिलता है, उसके अपनी इच्छाओं और कर्मों के अनुसार। तो इसलिए हमें समझ में आना चाहिए कि भगवान किसी से द्वेष नहीं करते और भगवान किसी से घृणा भी नहीं करते हैं, भगवान किसी को अलग से चाहते भी नहीं हैं। ऐसा नहीं कि वो फेवर करते हों, लेकिन हाँ, जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करता है उसके प्रति निश्चित रूप से भगवान बहुत ही दयालु हो जाते हैं, उसके पापों को पुण्यों कुछ भी नहीं गिनते, अपितु अपने धाम भी उस व्यक्ति को देते हैं। तो बुद्धिमान व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की सेवा में तत्परता से लग जाता है। हरे कृष्णा।